हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज से जो हम प्रारंभ करने जाने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पर हमारी चर्चाएं, और हम आशा करते हैं कि भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद ने जो हमें प्रस्तुत की है, इसमें ज्यादा से ज्यादा गहराई में हम गोते लगा सकें। भगवद गीता के इस समुद्र में हम ज्यादा से ज्यादा गोते लगा सकें, और ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें यदि हम डूब भी जाएं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये जो भौतिक समुद्र है इसमें कोई डूबना नहीं चाहता, परंतु भगवान की भक्ति का जो समुद्र है, भक्ति रसामृत सिंधु जिसे कहा है, या भगवद गीता, इसमें यदि हम डूबे भी तो ये हमारे उद्धार हेतु है। और इसलिए हम आप सब से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जो ये पहली क्लास में आए हो, ये आपकी पहली और आखिरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे अर्जुन ने बिना और कुछ किए पूरी भगवद गीता सुनी, ऐसा नहीं कि अर्जुन बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर जाते थे कुछ और करने के लिए, बिना व्यत्यय, मराठी में है ना, बिना व्यत्यय के, बिना किसी रुकावट खेद के अर्जुन ने पूरी भगवद गीता श्रवण की, और उसके पश्चात फिर अपने जीवन में भगवद गीता उन्होंने उतारी। तो आपको हम भगवद गीता बांट रहे हैं। अगली बार से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोगों में से कितनों के पास भगवद गीता है घर में, तो आप लोग सब अगले बुधवार से अपनी भगवद गीता की कॉपी लेकर आइए। और कितनों के पास नहीं है हाथ ऊपर कीजिए। तो आपको जो ये भगवद गीता दी गई है वो आप आज खरीद लीजिए। और अगले हफ्ते आप स्वयं और गीता दोनों आइए। तो ये हम कॉपियां इसलिए आपको दिए हैं क्योंकि आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम पूरे अध्याय को एक साथ उसका पाठ करेंगे। अक्सर भगवद गीता का पाठ कब किया जाता है, जब चला गया है वो, और पता नहीं वो कहां गया है, और उसके लिए जो चला गया है उसके लिए भगवद गीता का पाठ। तो जाने से पहले हम भगवद गीता का पाठ शुरू कर दें। और बहुत ही ये जो गीता का पाठ जब एक साथ होता है संस्कृत के श्लोकों का, क्यों इतना शुभ है ये आपको लगेगा जब हम अभी शुरू करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि इसके जो वाइब्रेशंस हैं, इसके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होंगी वो इतनी शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि हम साक्षात भगवान के मुख से जो निकले हुए वाक्य हैं, अक्षर हैं, शब्द हैं, उनका उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए भगवद गीता के हर एक श्लोक अक्षर में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं। तो यहां तक कहा गया है कि भगवद गीता का एक अक्षर भी यदि उच्चारण कोई कर ले तो उसका उद्धार निश्चित है। तो क्यों ना हम भगवद गीता एक एक अध्याय जो हम लेंगे, पूरे अध्याय का पाठ पहले और फिर एक एक श्लोक, एक एक शब्द, अक्षर, इनकी व्याख्या हम करेंगे। तो सबसे पहले तो गीता का महात्म्य जो कि पद्म पुराण में दिया गया है, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि ये गीता जो है इसे गीतोपनिषद भी कहा गया है। गीत उपनिषद और गीता ये सबसे पहले कौन से ग्रंथ में पाई गई है? महाभारत में। और श्रील व्यासदेव इन्होंने महाभारत की रचना की एक ही उद्देश्य से, भगवद गीता हम सबको देने के लिए। पूरे महाभारत की रचना, जिसके अंदर राजनीति, षड्यंत्र, फिर युद्ध, पारिवारिक समस्याएं और क्या कुछ नहीं है महाभारत में, बहुत रोमांचक है महाभारत। तो महाभारत को इतना रोमांचक बनाया व्यासदेव जी ने एक ही हेतु से कि हम जो कलयुग में, हम इन सब चीजों में बहुत रुचि लेते हैं, राजनीति, फिर षड्यंत्र, सस्पेंस, रोमांस, इन सब चीजों में ज्यादा रुचि लगते हैं हम। तो इनके द्वारा हम जब इस महाभारत ग्रंथ को उठाएंगे तो व्यासदेव जी ने क्या सोचा कि उस ग्रंथ को उठाकर जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो अंततः उस ग्रंथ के अंत में जब हम पहुंचेंगे तो हम पाएंगे भगवद गीता। इसलिए महाभारत की शुरुआत में व्यासदेव जी लिख दिए हैं कि पूरी महाभारत की रचना केवल भगवान श्री वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए मैं लिख रहा हूं और उनकी भक्ति सबको देने के लिए। तो भगवद गीता ये महाभारत के कौन से पर्व में पाई गई है? भीष्म पर्व में। तो भीष्म पर्व में है भगवद गीता। और भगवद गीता का जो महात्म्य है, जो कि पद्म पुराण में हम इन सब श्लोकों को लेंगे, तो आज के दिन हम केवल भगवद गीता का जो परिचय है, और देखेंगे समय मिला तो भगवद गीता की शुरुआत पहले श्लोक से, पहले अध्याय से हम कितना कर सकते हैं वो भी करेंगे। तो ये सारे जो भगवद गीता का गुणगान करते हुए जो श्लोक हैं, इन्हें हम गाएंगे। तो आप सामने जो आएंगे आपके, आप मेरे पीछे गाते रहिए। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अनुवाद इस प्रकार से है, यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये महत्व है, सबसे पहला महत्व बताया गया है भगवद गीता पढ़ने का, कैसे? निष्ठा से। मलिने मोचनं पुंसाम् जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतस्नानं संसार मलनाशनम्। अनुवाद इस प्रकार से, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यहां पर मैं एक मुद्दा कहना चाहूंगा कि गंगा जल के विषय में कहा गया है, गंगा जल में शक्ति कहां से आई है? भगवान के चरणों को स्पर्श कर। इसलिए गंगा का एक और नाम है विष्णुपादी, भगवान श्री विष्णु के पद से निकली हुई है गंगा। और गीता कहां से निकली? भगवान के मुख से। तो यदि गंगा जल में इतनी शक्ति है जो कि भगवान के चरणों से निकली है, तो सोचिए भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी, इसमें कितनी शक्ति है इसीलिए कहा गया है मलिने मोचनम पुमसाम दिने दिने। यदि कोई गंगा में भी स्नान करे रोज हर दिन अहनी अहनी, परंतु यदि वो भगवत गीता के इस अमृत में एक बार भी स्नान कर ले तो वो सैकड़ों बार गंगा स्नान करने से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये गीता अमृत का स्नान। तो यहां पर ये मैं कहना चाहूंगा कि गंगा भगवान के पद से निकली, भगवत गीता भगवान के मुख से। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रितः। अनुवाद इस प्रकार से है, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। तो यहां पर भगवत गीता को सभी वैदिक ग्रंथों का राजा बताया गया है कि वो शिरोमणि है सभी वैदिक ग्रंथों के, इसलिए उसका पाठ होना चाहिए। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रादिनिविश्रितम् गीता गंगोदकं पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण जो कि मूल विष्णु, उन्हें स्वयं उन्होंने सुनाया है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, सर्व उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अनुवाद इस प्रकार से, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में है विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बहुत ही सुंदर ये भगवत गीता का गुणगान इस श्लोक में किया गया है कि भगवत गीता की तुलना या वैदिक ग्रंथों की तुलना गाय से की गई है। और गाय का सार होता है गाय का दूध, तो वैदिक ग्रंथों का सार है भगवत गीता। और भगवान श्री कृष्ण जो कि ग्वाले हैं, एक ग्वाला ही ठीक से दूध निकाल सकता है। किसी ने गाय का दूध निकाला है यहां पर? तो आप लोग जानते होंगे जिन्होंने निकाला है कि यदि गाय हमारे सामने है, स्तनों में दूध भी है गाय के, परंतु हम गाय का दूध नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें दूध निकालना आता नहीं। तो यदि हम सभी ग्वालों को लें, इस संसार के सभी ग्वालों को लें जो कि इतने निपुण हैं दूध निकालने में, उन सभी ग्वालों के सरदार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनसे ज्यादा निपुण कोई नहीं गाय के दूध को निकालने के लिए। तो ये जो वैदिक साहित्य रूपी जो गाय है और भगवत गीता जो दूध रूप में है और भगवान श्री कृष्ण जो कि ग्वाले हैं और यदि सभी बछड़ों को हम लें तो सभी बछड़ों में से अर्जुन ऐसे बछड़े हैं जो इस दूध का पान ऐसे उन्होंने किया कि सभी बछड़ों को उन्होंने ये उदाहरण सेट कर दिया कि इस दूध का पान कैसे करना चाहिए। तो अर्जुन पार्थ वत्स उन्हें कहा गया है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भगवान श्री कृष्ण उन्होंने सारी पूरी भगवद गीता, संपूर्ण भगवद गीता उन्होंने एक मुद्रा में सुनाई। जैसे कि तंत्र शास्त्र के अनुसार अलग अलग विधि विधानों के लिए अलग अलग मुद्राएं होती हैं। जब हम भगवान की आरती करते हैं तो भगवान की आरती उसके लिए शुद्ध जल चाहिए, तो शुद्ध जल, वो शुद्ध जल कैसे बनेगा? केवल कोई भी जल लेकर उसे हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। अर्च विग्रह उनकी जब पूजा होती है तो उसमें जल को शुद्ध किया जाता है और वो श्लोक भी गाया जाता है, गंगे च जमुना चैव सरस्वती गोदावरी कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। परंतु उस श्लोक को गाने के साथ साथ एक मुद्रा है, एक मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है मैं भूल रहा हूं थोड़ा, हाँ नरोत्तम प्रभु ऐसे ऐसे, हाँ ये वाली उंगली, ये वाली उंगली उस जल को स्पर्श करते हुए ये श्लोक गाना होता है। और भी जितने सारे वस्तुएं हैं भगवान के आरती के, उन्हें शुद्ध करने के लिए जैसे बीजाक्षर मुद्रा है, मत्स्य मुद्रा है, ये अलग अलग प्रकार की मुद्राएं हैं। तो भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाई ज्ञान मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में? कोई जानता है ज्ञान मुद्रा कैसी है? योगा मास्टर ज्ञान मुद्रा जानते नहीं? हाँ ये है ज्ञान मुद्रा, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। तो भगवान ने भगवद गीता का जो ज्ञान अर्जुन को दिया, भगवान पूरी भगवद गीता इस ज्ञान मुद्रा में भगवान ने अर्जुन को सुनाई। तो यहां पर ये जो श्लोक हमने लिया जिसमें भगवान को एक ग्वाला कहा गया है, भगवान है ही, तो भगवान की ज्ञान मुद्रा और भगवान एक ग्वाले के रूप में क्या संबंध है इसका? ज्ञान मुद्रा की जो प्रमुख मुद्रा है उसमें ये दो उंगलियां लगती हैं और गाय के दूध निकालने में भी ये दो उंगलियां लगती हैं। गाय का दूध निकालने के लिए भी ये दो उंगलियां प्रमुखता ये दो उंगलियां की होती हैं। तो ये दो उंगलियां गाय के दूध निकालने में प्रमुख होती हैं और ये दो उंगलियां हैं ज्ञान मुद्रा में प्रमुख। तो यहां पर इस श्लोक में जो भगवान को एक ग्वाला कहा गया है, तो जैसे ग्वाला ये दो उंगलियों का इस्तेमाल करता है दूध निकालने के लिए, वैसे ही भगवान ने ये गीता का दूध, ये अमृत हम सबको देने के लिए जब उन्होंने दुहा वैदिक ग्रंथों को, तो इस मुद्रा में, इस ज्ञान मुद्रा में भगवान ने संपूर्ण गीता अर्जुन को सुनाई। तो ये महत्व है इस श्लोक का, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और केवल एक ही कार्य हो भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो यहां पर शास्त्र के विषय में कहा गया है भगवद गीता एकमात्र एकमेव। अब यहां पर हम गुरु परंपरा देखते हैं कि हम जो ये भगवद गीता यथारूप हमें मिली है, ये केवल श्रील प्रभुपाद ने कहीं से गीता लेकर अनुवाद नहीं कर दिया और हमें दे दिया ले लो। श्रील प्रभुपाद ने ये भगवद गीता हमें दी है, सारी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद वहां पर लिखे हैं कि किन किन के हाथों से ये भगवद गीता हमें मिली है। तो यहां पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास देव, मध्व मुनि से पद्मनाभ, वहां से नरहरि, फिर माधव, अक्षोभ्य से जयतीर्थ, जयतीर्थ से ज्ञान सिंधु, वहां से दयानिधि, विद्यानिधि से राजेंद्र, जय धर्म पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ से व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, रघुनाथ जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, जगन्नाथ बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर से गौर किशोरदास बाबाजी, भक्त सिद्धांत सर ठाकुर और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो यहां पर भगवद गीता यथारूप में ये सिद्ध किया गया है कि ये भगवद गीता कोई कहीं रोड से या दुकान से खरीद कर श्रील प्रभुपाद ने नहीं दिए हमें, ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण से ऐसे धरोहर के रूप में, गुरु शिष्य परंपरा के धरोहर के रूप में हमें मिली है। इसलिए उदाहरण दिया है कि भगवद गीता ये जो परिपक्व फल है सारे वैदिक ग्रंथों का, जैसे भागवत भी परिपक्व फल है, तो जैसे फल जब पक जाता है किसी वृक्ष पर, तो उस फल को यदि कोई ऐसे ही फेंक दे नीचे तो नीचे गिरकर वो फट जाएगा, सारा उसका जो रस है वो फैल जाएगा। तो फल जब पक जाता है तो उसे एक एक टहनी और शाखाएं से नीचे उतारा जाता है ताकि उसके अंदर का जो रस है वो बना रहे, इंटैक्ट रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ये रस दिया ब्रह्मा जी को और अर्जुन को तो बाद में दिया, तो पहले जो ये सारा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी को दिया उसमें से है भगवद गीता। तो वो सब धरोहर के रूप में जैसे एक परिपक्व फल को एक एक कर नीचे उतारा जाता है और जब दिया जाता है तो उसका सारा जो रस है, सत्व है, वो बना रहता है। तो भगवद गीता, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप कहा इसे, भगवद गीता जशी आहे तशी, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई, जशी भगवान श्री कृष्ण ने सांगितली, तशीच भगवद गीता आम्हाला श्रील प्रभुपाद ने दिली, बरोबर। तो इसलिए ये भगवद गीता कोई, जो प्रभुपाद यथारूप दिए हैं वो कोई साधारण नहीं है। इसलिए कुछ दो दिन पहले एक व्यक्ति जो अमेरिका से यहां पर आए थे वो मुझसे चर्चा कर रहे थे, और उन्हें श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता में सबसे अच्छा ये गुरु शिष्य परंपरा का जो लिस्ट है वो लगा। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने किसी भी गीता में इतनी प्रामाणिकता नहीं देखी कि इस प्रकार से बताया गया है कि ये 32 गुरु शिष्य परंपरा का जो लिस्ट और कैसे किन से ये सब कुछ मिला है, यदि एक एक इनको हम लें तो फिर तो हम आज शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो आप गीता में देख लीजिए, सारा लिस्ट है जो हम आपको दिखाए हैं। अंततः हमारे श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हमें ये भगवद गीता दी, तो भगवद गीता अब अध्याय पहला, अब आप लोग सब पहला अध्याय खोलिए आपके पास जो गीता है, और पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं। पूरी भगवद गीता में कितने? 700। पहले अध्याय में है 46 श्लोक। तो आज हम एक साथ सारे 46 श्लोक इनका पाठ करेंगे और फिर हम जो पहला श्लोक है वो लेंगे। तो आप लोग भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक क्रमांक पहला हम सब एक साथ गाएंगे, और आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि हाँ ट्यून में बताऊंगा ना, लेकिन आप लोग ध्यान से अक्षरों की तरफ, यदि संस्कृत किसी ने सीखा है तो और भी आसान हो जाएगा, परंतु हिंदी भी यदि सीखा है, हिंदी तो सीखे है ना, मराठी वो सब देवनागरी में वो सरल हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आप सुनेंगे, हम जितना उच्चारण करेंगे हर हफ्ते उतना हमें भगवद गीता के श्लोक और कंठस्थ भी होंगे, पाठ भी होंगे, और हमारी शुद्धता भी होगी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं शमुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महाश्वेता भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजीत कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्ठाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिं जय। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयनन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान् तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तथा श्वेतैर्हयैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एत्रेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षयः सञ्जय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति तत्र पश्यत्सितान् पार्थ पितृन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशिदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न्यत शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतिव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला स्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नातोऽपि मधुसूदन अपित्रैलोक्य राज्यस्य एतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न कापित्रीस्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव यद्येप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पतरो येषां लुप्तपिण्डोदकः क्रिया दोषैरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्तित्यो अनुशुश्रुम अहो बत महत्पाप कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमत्तरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये ऋतोपस्त उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः आनंद है। तो ये जो पहला अध्याय है, कोई जानता है इस पहले अध्याय का शीर्षक क्या है? अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। तो ये जो अर्जुन विषाद योग, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन वो विषाद में चले गए। क्यों विषाद में चले गए? क्योंकि अर्जुन ने जब अपने ही सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख जब ये सोचा कि इनकी हत्या मुझे करनी है, मेरा उत्तरदायित्व है इन्हें मारने का, तो उनके अंदर इनके प्रति सहानुभूति जागृत हुई। हालांकि उनमें से कोई भी सहानुभूति जताने के योग्य नहीं थे, कोई नहीं थे, परंतु अर्जुन जो कि एक एक करुणा युक्त एक भक्त हैं, उनके अंदर वो सहानुभूति, और इसलिए अर्जुन हालांकि उस विषाद में गए, तो अर्जुन जैसे व्यक्ति जब विषाद में जाते हैं परंतु उसके साथ उनका योग होता है। योग किसके साथ? योग का अर्थ क्या है? भगवान से संबंध स्थापित होना। तो इसलिए अर्जुन जैसे भक्त विषाद में भी जाते हैं तो भगवान से संपर्क में रहते हैं। तो यहां पर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इस पहले अध्याय में अर्जुन ने जो विषाद ये प्रकट किया है ये माया के अधीन होकर अर्जुन विषाद में गए, नहीं। इसलिए पहले अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, कि यदि भगवान श्री कृष्ण के योग संपर्क में वो आ रहे हैं तो चाहे विषाद हो, चाहे वो आह्लाद हो या प्रह्लाद हो, चाहे जो भी हो स्थिति, यदि भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में योग में जो आ रहा है, इसलिए अर्जुन इनके विषय में कहा गया है कि अर्जुन ने पूरी गीता सुनी, तत्पश्चात और गीता सुनाई अर्जुन को भगवान ने, इसी कारण है तो हमने इसके विषय में चर्चा की कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहते थे, विषाद कर रहे थे, मारने से पहले वो लोग मरे भी नहीं है, उससे पहले अर्जुन शोक कर रहे हैं। जैसे कई बार भौतिक संसार में भी लोग मरने से पहले शोक शुरू कर देते हैं, बेचारे वृद्ध व्यक्ति घर में, हो सकता है कि उनकी स्थिति ऐसी हो, परंतु बोल बोल कर याद दिलाते हैं, अरे आप अभी जाने वाले हैं, छोड़कर आप मरने वाले हैं, और जब वो मृत्युशैया पर हैं तो बार बार याद दिलाया जाता है, आप छोड़ के चले जाएंगे, आप मरने वाले हैं, बस अब हम अकेले रह जाएंगे। तो वो यदि उस क्षण न भी जा रहे हो तो याद दिलाया जाता है कि आप रुकना मत, जाओ बहुत हो गया। तो यहां पर अर्जुन उस स्थिति में नहीं थे, अर्जुन जो विषाद कर रहे थे, अर्जुन वास्तविक रूप में इनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे थे। तो युद्ध में ये सारी गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ने विषाद फिर से किया, पहले तो गीता सुनने के पहले विषाद किया, ये जो अध्याय है पूरा, और गीता सुनने के पश्चात कब अर्जुन ने विषाद प्रकट किया, कब विलाप किया, कोई जानता है? हाँ, नहीं, वो तो युद्ध के पश्चात ये सब कुछ, युद्ध के बीच में। अभिमन्यु, जब अभिमन्यु की हत्या हुई, और अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की जब हत्या हुई तो अर्जुन वो विलाप करने लगे, सारी गीता सुनने के बाद। मध्व संप्रदाय के पेजावर स्वामी अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जब अर्जुन विलाप कर रहे थे अभिमन्यु के वध के पश्चात, तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो अर्जुन थोड़ा सकपका गए कि अरे भाई, भगवान इतनी गीता सुनाए, बोले कि फिर विलाप कर रहा है तुम। तो भगवान भी आकर रोने लगे, भगवान भी अर्जुन को ज्वाइन किए। तो अर्जुन ने देखा, रोते रोते देख रहे, भगवान भी रो रहे हैं, फिर ठीक है, थोड़ा और रोते हैं। तो सब कुछ हो गया, फिर अंतिम संस्कार वगैरह, तत्पश्चात अर्जुन थोड़ा संभले तो जाकर वो भगवान से पूछे, एक चीज बताइए, मैं तो रो रहा था, बाकी भी सब रो रहे थे, आप क्यों रो रहे थे? तो भगवान कहा, मैं रो रहा था कि इतनी सारी गीता सुनने के बाद फिर तुम रो रहे। तो मैं तुम्हारे ऊपर रो रहा था, अभिमन्यु पर नहीं रो रहा था। तो यहां पर अंतर यह है कि अर्जुन ने जब अपने पुत्र की हत्या का समाचार सुना तो अर्जुन ने विलाप किया, एक और योद्धा, उन्होंने भी 18 दिन के बीच में ही अपने पुत्र की हत्या का समाचार सुना, द्रोणाचार्य। यहां पर द्रोणाचार्य ने समाचार सुना, अश्वत्थामा की हत्या हुई नहीं थी, और यहां पर अर्जुन ने केवल समाचार ही नहीं सुना बल्कि सही समाचार सुना, अभिमन्यु की हत्या हुई। तो दोनों ने विलाप किया, द्रोणाचार्य ने भी विलाप किया अपने पुत्र की हत्या समाचार सुनकर, अर्जुन ने भी विलाप किया अपने पुत्र की हत्या के समाचार सुनकर। परंतु दोनों में अंतर कोई पहचान सकता है? महाभारत पढ़ी या देखी? अंतर दोनों में यह था कि द्रोणाचार्य समाचार सुनने के पश्चात उन्होंने युद्ध त्याग दिया, रणभूमि त्याग दी, हथियार छोड़ दिए, अब कोई फायदा किसके लिए लड़ू मैं? तो द्रोणाचार्य ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना कर्तव्य छोड़ दिया। परंतु अर्जुन, अंतर यह था, अर्जुन ने विलाप किया परंतु उसके पश्चात गांडी वो उठाकर वो गए फिर से युद्ध करने के लिए। तो यहां पर अर्जुन ने सिखाया, जो भगवद गीता का श्रवण करता है उसके अंदर स्वाभाविक भावनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि वो पत्थर के समान कठोर बन जाता है, स्वाभाविक भावनाएं होती हैं। जब कोई नजदीकी कोई व्यक्ति रिश्तेदार जब गुजरता है तो स्वाभाविक भावनाएं होती है, परंतु अपना कर्तव्य छोड़ता नहीं, कर्तव्य वो करता है उसके साथ साथ। तो यहां पर अर्जुन, हालांकि विषाद योग, आगे भी अर्जुन विषाद में गए परंतु आगे भी विषाद योग योग बना रहा उनका कर्तव्य और भगवान से, जैसे कि यहां पर भी इस अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। कई बार लोग कहते हैं भगवद गीता तो दूसरे अध्याय से शुरू होती है ना, सुना होगा आपने, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान ने, भगवान के मुख से निकला हुआ पहला वाक्य कौन सा श्लोक? हाँ, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासुम अगतासुमश नानु शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुमने तब तक देखिए ये 46 श्लोक और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक, इतने सारे श्लोक, 56 इतने श्लोक भगवान सुन रहे हैं, अर्जुन का क्लास सुन रहे हैं, अर्जुन क्लास शुरू किए और भगवान श्रोता बने, और भगवान ने पहला श्लोक, पहली वाणी, पहला अक्षर 2.11, दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। तो लोग कहते हैं कि भाई ये भगवद गीता का पहला अध्याय भगवद गीता नहीं, क्योंकि भगवद गीता का अर्थ क्या है? भगवान का गीत है ना, भगवद गीता का अर्थ क्या है? भगवान का गीत। तो भगवान का गीत शुरू हुआ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, तो वहां से गीता पढ़नी चाहिए। ये पहला अध्याय क्या है? केवल विषाद विषाद, और इसमें तो क्या कुछ नहीं बताया गया है वो भी हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन का विषाद तो आगे चलकर शुरू हुआ है, इसके पहले तो युद्ध भूमि रणभूमि में दुर्योधन ने क्या क्या किया, कौन कौन से शंख बजे, नाद स्वर क्या क्या हुआ युद्ध के लिए, ये सब का वर्णन, ये क्या है, इसमें थोड़ी कोई, इसे थोड़ी कोई गीता कहते, तो हम इसे कैसे समझे? भगवान श्री कृष्ण की वाणी हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि भगवान के भक्तों के द्वारा वो वाणी हमारे जीवन में प्रवेश करे। डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर कूदना, इसे कहते हैं मायावाद। इसलिए अर्जुन के थ्रू, अर्जुन के द्वारा हमें भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, इसलिए बिना अर्जुन की कृपा के, बिना भगवान के पार्षदों की कृपा के, भगवद गीता की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये जो अध्याय है इसे भी बहुत ध्यान पूर्वक, निष्ठा से, श्रद्धा से समझना है, यह अध्याय पहला। तो इसलिए जो इसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन ने हमें सिखा दिया कि विषाद में भी यदि कोई भक्त जाता है तो वह माया में नहीं है, क्योंकि वो भगवान के योग संपर्क में रहता है। अब अध्याय पहला, इसकी हम आपको एक रूपरेखा दे दे, कितने श्लोक बताए हमने आपको? 46, ठीक है, तो 46 श्लोक हैं। तो इसका विभाजन इस प्रकार से हुआ है, पहले श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक, इस अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं लड़ाई के लिए कैसे तैनात हुई ये बताया बस। तो हम जब अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे तो आप ध्यान रखिए या नोट कर लीजिए कि 27वें श्लोक तक इस अध्याय में सेनाओं के विषय में इनका विवरण दिया गया है कि कौन कौन सी सेना थी, उस सेना के कौन कौन से योद्धा थे, कैसे वो तैनात थे, इन सब की चर्चा पहले 27 श्लोकों में हुई है। तो पहला विभाजन अध्याय का इस प्रकार से है, और दूसरा विभाजन इस अध्याय का है कि 28वें श्लोक से अंतिम श्लोक तक, लड़ाई न करने के लिए अर्जुन के दिए हुए तर्क। तो अर्जुन ने देखो कितने सारे तर्क दिए इतने सारे श्लोकों में कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये इस अध्याय का दूसरा भाग। तो दो भागों में ये अध्याय विभाजित है। अब हम सबसे पहला श्लोक लेंगे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, और इस श्लोक की व्याख्या अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से उन्होंने की है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निंबार्काचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, फिर केशव काश्मीरी और श्रीधर स्वामी, ऐसे कितने सारे आचार्यों ने जो भगवद गीता पर टीका लिखे हैं पहले श्लोक के ऊपर, पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर बहुत व्याख्याएं की हैं। इसलिए ये आप समझ लीजिए कि भगवद गीता की तुलना यदि हम चावल से करें तो चावल को कितने प्रकार से पकाया जा सकता है, बहुत से प्रकार हैं। चावल में यदि आप हल्दी नींबू डाल दो तो लेमन राइस हो जाता है ना। चावल में थोड़ा केसर डाल दो केसरी भात, चावल में थोड़ी इमली डाल दो तो वो टैमरिंड राइस उसे कहते हैं, फिर फ्राइड राइस, शेजवान राइस। नासिक में आने के बाद बहुत कुछ मुझे और भी सीखने को मिल रहा है। तो क्या क्या अलग, एक चावल ही है, उस चावल को यहां वहां तड़का मार कर अंदर बाहर कर कर क्या कुछ नहीं निकाल पाते आप चावल से, है ना। तो वैसे ही भगवद गीता जो मूल है वो चावल के समान है, और इन आचार्यों ने जो ये भगवद गीता के ऊपर व्याख्याएं की हैं, ये सारी जो व्याख्याएं हैं ये सब उन्होंने अपना अपना छौंक लगाया है, अपने अपने मसाले। तो ये सब अलग अलग तरीके से उन्होंने भगवद गीता को प्रस्तुत किया है ताकि ये हमें और भी, जैसे कि हमने अभी 46 श्लोक तो पढ़ ली, समझ में आ गया सबको पहला अध्याय। तो वो पढ़ने में कहां से कहां जा रहा है श्लोक, और सभी समझ में नहीं आ रहा था, उसको उसकी व्याख्या कर पाना, शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद ये सब तो दूर क्यों। इसलिए इन्होंने ये सब कुछ ताकि अच्छी से मसालों के साथ चावल अच्छी से हजम हो जाए और कब्ज ना पैदा हो, ये सब कुछ ना हो, इसलिए इन्होंने ये सारे व्याख्याएं तात्पर्य अपने दिए हैं। तो ये श्लोक हम एक साथ फिर गाएंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इस श्लोक में उवाच, उवाच का अर्थ क्या होता है, बोलना। श्री भगवान उवाच, श्री गोप उवाच, श्री शुक उवाच, श्री राज उवाच, परीक्षित उवाच। तो उवाच का अर्थ है बोलना। तो यहां पर भगवत गीता की शुरुआत, भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ, अभी हमने इतना सब कुछ सुना, गंगा जल से भी पवित्र, और ये भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली है, सभी वेदक ग्रंथों का सार, और भगवत गीता की शुरुआत, पिक्चर की शुरुआत ही विलन से हो रही है। तो कोई पूछे क्या है भाई, भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ की शुरुआत सब कुछ पढ़ने के बाद धृतराष्ट्र उवाच। तो इसकी भी व्याख्या की गई है कि भगवत गीता की शुरुआत, सबसे पहला शब्द भगवत गीता का वो है हमारे धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र आप सब जानते हैं कौन थे, वो हम सब जानते हैं, जिनके षड्यंत्रों के वजह से ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि रची गई थी। तो वो जो कर्ता धर्ता इस पूरे युद्ध के, वो धृतराष्ट्र, इनको संबोधित करते हुए भगवद गीता की शुरुआत हो रही है। तो यहां पर बलदेव विद्याभूषण वो कहते हैं कि भगवद गीता का जो पहला अक्षर है वो है ध। और यदि मैं आपको एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछूं, भगवद गीता का अंतिम अक्षर कौन सा? अंतिम श्लोक किसी को पता है? हाँ, मां। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो भगवद गीता का पहला अक्षर ध से शुरू हुआ और अंतिम अक्षर म से। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवद गीता के बीच में ध और म के बीच में भगवद गीता को धर्म शास्त्र कहा गया है। इसलिए सभी शास्त्रों के धर्म शास्त्र हैं ये भगवद गीता, कि इसकी शुरुआत ध से और म। तो ध और म के बीच में जो सारा धर्म जो हमें भगवान सिखाए हैं वो है इस भगवद गीता में। तो इसलिए भगवद गीता को धर्म शास्त्र कहा गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र इस शब्द को लेकर कि धृत और राष्ट्र, इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है धृतराष्ट्र। उवाच तो हमने सुन लिया कहना, धृतराष्ट्र का ये अर्थ। तो अब राष्ट्र तो हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में हम हैं, तो राष्ट्र का अर्थ तो हम जानते हैं। धृत का अर्थ क्या होता है? घी। वो घृत है, घृत। यावत जीवेत घृतम पीबेत। लगता है घी बहुत अच्छा लगता है। वो घ घ हो गया, ये ध धृत। हाँ, कपटी? नहीं नहीं, पॉलिटिकल नहीं। अच्छा, आपको एक और शब्द हम कहेंगे, ध्रुव। ध्रुव महाराज ने अपने उदाहरण से क्या, कौन सा गुण हमें सिखाया? दृढ़ता। तो जैसे ध्रुवा नीतिर मतिर ममा जो अंतिम श्लोक में है, तो धृत का अर्थ है जो दृढ़ व्रत हो, जो दृढ़ व्रती हो, जो हटी हो, दृढ़ व्रती हो, वो है धृत। तो ये हैं हमारे धृत राष्ट्र। दृढ़ व्रती हैं परंतु किसके प्रति? राष्ट्र। और वो कौन सा राष्ट्र? हस्तिनापुर। तो उन्होंने अपने नाम को सिद्ध किया कि हस्तिनापुर को छोड़ा नहीं, पकड़कर रखा। कब तक? जब तक कि विदुर आकर गाली देकर धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल दिए। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जीत चुके हैं, तब फिर श्रीमद् भागवत में यह अध्याय है, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो धृत और राष्ट्र, इसका अर्थ यह है। अब धृतराष्ट्र के विषय में कहा गया है कि धृतराष्ट्र और राष्ट्र के पति इतना ज्यादा दृढ़ व्रति कैसे बने? तो सबसे पहले बताया गया है कि धृतराष्ट्र दो दफे राजा बनते बनते वो रह गए। कोई जानता है कौन से दो दफे? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, नहीं, पांडु छोटे थे, क्योंकि सबसे पहला नियम कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे राजगद्दी मिलनी है, ज्येष्ठ पुत्र को। तो धृतराष्ट्र वो ज्येष्ठ थे पांडु से, परंतु ये एक सिद्ध हो गया, ये एक उनको योग्यता मिल गई थी, केवल पहले पैदा होने की वजह से राजगद्दी उनको मिल जाती। तो ये तो सिद्ध हो गया था कि ये योग्य हैं। किस दृष्टिकोण से? ज्येष्ठ होने के दृष्टिकोण से योग्य हैं, परंतु नहीं दिया गया। क्यों? अंधे, उसके वजह से राजगद्दी नहीं मिली। और दूसरी दफा ये कथा है कि पांडु वो जानते थे कि ये धृतराष्ट्र जो है ये इतना आसक्त है। पांडु थे राजगद्दी पर, तो पांडु स्वयं वो अपनी स्वेच्छा से वो जानबूझकर बाहर अपने कार्य में लगे रहते थे, अलग अलग राज्यों को जीतना और शिकार में रहना, इन सब कार्यों में, ताकि उनके बड़े भाई जिनको राजगद्दी कभी नहीं मिलने वाली थी, कम से कम वो मेरी अनुपस्थिति में बैठे तो रहें गद्दी को पकड़कर, तो थोड़ा गद्दी को स्पर्श करते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ गद्दी है नीचे। दिख तो नहीं सकती वो गद्दी, परंतु है नीचे, और वो ही राजगद्दी। तो पांडु वो अपने भाई पर कृपा कर वो बाहर घूमते फिरते। तो हुआ ऐसा कि पांडु जब शिकार के लिए गए थे तो किंदिम ऋषि करके थे, उन्हें गलती से पांडु ने अपने बाणों से शिकार कर दिया गलती से। तो किंदिम ऋषि ने श्राप दे दिया पांडु को कि तुम जब अपने पत्नी के साथ सहवास करोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो अब धृतराष्ट्र खुश हो गए, क्योंकि अभी पांडु के कोई पुत्र नहीं हो सकते। तो धृतराष्ट्र को फिर से आशा आ गई। पहले कब आशा हुई थी? क्योंकि पहले जन्मा हूं तो वो आशा थी, परंतु वो आशा भी निराशा में परिणित हो गई जब अंधा पैदा हो गए। अब यहां पर फिर से आशा कि अभी पांडु का तो कोई पुत्र नहीं होगा, तो कम से कम मेरा पुत्र तो बनेगा राजा मेरे पश्चात। इसलिए कई बार पिता कहते हैं ना, अरे मैं इंजीनियर नहीं बन सका, कम से कम तू तो बन रहे इंजीनियर। अरे मेरे पिताजी ने तो मेरे को खाली मराठी मीडियम में, वहां पर भी 12 खड़ी, बस वो उसमें कर मेरे को बाहर निकाल दिया, छठी फेल। तो मैं ये गलती नहीं करूंगा जो मेरे पिता ने की, बोलते हैं। तो कम से कम, जैसे एक बार एक पिता और पुत्र में 10वीं की परीक्षा चल रही थी, तो पिताजी पुत्र से कहते हैं कि यदि तुमने 10वीं पास कर ली, इतने परसेंटेज ले लिए, 75, इतने परसेंटेज तुम्हारे आ गए, तो तुम्हें मैं एक 2-व्हीलर खरीद के दूंगा, नया 2-व्हीलर खरीद के दूंगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा और यदि मुझे मैं पास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो कुछ तो देंगे आप? हाँ, फिर मैं थ्री व्हीलर ला के दूंगा, फिर चलाना रिक्शा। तो इसे लगा कि अच्छा थ्री व्हीलर मिलेगा फेल होने से, बोला अच्छा है फेल होना। तो यहां पर धृतराष्ट्र ने सोचा कि अरे मैं नहीं तो दुर्योधन सही, कम से कम मैं दुर्योधन के द्वारा तो राजा बन जाऊंगा। तो फिर से आशा कि पांडु को तो श्राप मिल गया एक किन्निम ऋषि का, तो फिर अब आशा आ गई। परंतु फिर पता लगा कि ये कुंती ने वो जो वर मिला था सब देवताओं के द्वारा, फिर युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, ये सब पैदा हो, और युधिष्ठिर फिर दुर्योधन से पहले पैदा हो गए। तो वो जो आशा अब बन रही थी फिर से वो टूट गई। तो यहां पर धृतराष्ट्र का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धृतराष्ट्र वो इतना आसक्त क्यों बना, क्यों उसका नाम ये धृतराष्ट्र, इतना आसक्त वो क्यों बना? क्योंकि माया ने उसे ऐसा झांसा दिया। यदि माया देवी उसे ये लोभ दिखाती नहीं कभी धृतराष्ट्र को, यदि धृतराष्ट्र पैदा ही छोटा होता, पांडु से छोटा या पांडु ज्येष्ठ होते, या ये दूसरी जो दफा है धृतराष्ट्र को ये जो आशा मिली, यदि वो भी कुछ नहीं होता तो धृतराष्ट्र इतना ज्यादा आसक्त नहीं रहता। तो यहां पर धृतराष्ट्र के उदाहरण से हमें भगवद गीता में क्या सीख मिलती है कि हमारी आसक्ति इस राष्ट्र, हम सब का भी एक एक राष्ट्र है, हमने भी अपना अपना राष्ट्र खोल रखा है। ये नहीं कि हम धृतराष्ट्र वो आसक्त था, मैं कहा धृतराष्ट्र जो अपनी राजगद्दी, और वो भी उसकी नहीं थी, उस राष्ट्र से आसक्त, तो हमने भी अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं। मेरा शरीर ये सबसे पहला राष्ट्र, ये जो राष्ट्र है जिसके अंदर मैं हूं ये मेरा शरीर, फिर ये शरीर से संबंधित और सारे शरीर, फिर वो सारे शरीर मिलकर, जो हम सब शरीर मिलकर हमने एक राष्ट्र खोल लिया है, हमारा घर का जो राष्ट्र है, फिर सारे घर मिलकर हमने एक समाज खोल लिया, वो एक राष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, फिर उससे भी महान राष्ट्र, फिर ये पूरा राष्ट्रपति बन जाते हैं कोई तो हम सब भी एक दृष्टिकोण से माया देवी द्वारा दीक्षित। क्या नाम मिला है हम सबको भी? धृतराष्ट्रदास। हम स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु ये नाम मिल चुका है हमारे कर्मों के द्वारा। ये सारे जो राष्ट्रों से हम आसक्त हैं, ये धृतराष्ट्र के ही कार्य। तो माया देवी देखो कैसे हमें ये इन सब राष्ट्रों से आसक्त बनाती है, जैसे धृतराष्ट्र को, कि पहले दिखाया लड्डू, ये देखो लड्डू खाओ खाओ खाओ, और धृतराष्ट्र आगे आया खाने के लिए, तब पीछे कर लिया, अब ढूंढते रहो। तो माया देवी हमें अपने राष्ट्रों से आसक्त ऐसे ही बनाती है, जैसे धृतराष्ट्र को पहले हमें दिखाती है, ये देखो ये करने से ये इंद्रिय भोग मिलेगा, वो करने से ये सुविधा, ये सब कुछ। और धीरे धीरे जब हम आशा बांधने लगते हैं संसार में, तब फिर जैसे ही हमारी आशा बंद जाती है तब माया हमें तोड़ती है कि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तब और दुख होता है। तो इसलिए कहा गया है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि धृतराष्ट्र के उदाहरण से भगवद गीता हमें सबसे पहले सिखा रही है इस भौतिक संसार से आशा छोड़ दो, मत रखो आशा इस भौतिक संसार में। तो ये सबसे पहला कारण कि धृतराष्ट्र दृढ़ व्रति कैसे रहा अपने राष्ट्र, दो दफा उसे ये प्रलोभन मिला। इतना भी नहीं कि वो दुर्योधन से आसक्त, यदि प्रलोभन भी मिला परंतु उसके साथ दुर्योधन के प्रति ऐसी आसक्ति थी, धृतराष्ट्र को केवल वो शारीरिक रूप से अंधा नहीं था, दुर्योधन से ऐसी आसक्ति, जब दुर्योधन पैदा हुआ, आप जानते हैं दुर्योधन पैदा कैसे हुआ, जब गांधारी ने सुना कि कुंती ने युधिष्ठिर को पैदा कर दिया है, तो गांधारी ने अपने ही हथेली से अपने ही पेट पर मारना शुरू किया कोसते हुए कि क्या फायदा अब इस गर्भ के पैदा होने का, जब कुंती ने मुझसे पहले जन्म दे दिया है किसी पुत्र को। तो मारा तो वो जो अंदर का जो गर्भ वो 100 टुकड़ों में हो गया, और वो पैदा हुए उनमें से सबसे बड़ा टुकड़ा था ये दुर्योधन। और ये दुर्योधन जब पैदा हुआ तो आवाजें जैसे 100 गधे एक साथ ढेंचू ढेंचू करते हैं, वो आवाज हुई, गधों की आवाज। ये दुर्योधन का स्वागत हुआ पैदा होते ही, ये सब कीर्तन चल रहा था, गधों का कीर्तन। तो सारे जितने भी अपशकुन थे वो सारे अपशकुन, देखिए गांधारी धृतराष्ट्र, इन्हें पता कि पैदा होने से पहले क्या स्थिति में, किस चेतना में ये सारे 100 पुत्र पैदा हुए, और उनमें से ये सबसे बड़ा दुर्योधन, और पैदा होते ही ये दुर्योधन क्या क्या अपशकुन दिखाई पड़े या सुनाई पड़े, देख तो नहीं सक रहे थे, सुनाई पड़े। इसके बावजूद धृतराष्ट्र आसक्त इस दुर्योधन में, जिसकी पैदाइश ऐसी थी। तो इसलिए ये धृतराष्ट्र, ये विशेष रूप से कहा गया है, क्योंकि इन सब के बावजूद जो इतना दृढ़ वृत्ति है, कौन से राष्ट्र के प्रति, अब दुर्योधन वो विस्तारित राष्ट्र के प्रति, तो इसलिए धृतराष्ट्र का नाम है धृतराष्ट्र। और तीसरा कारण कि धृतराष्ट्र क्यों, क्योंकि शकुनी जैसे व्यक्ति का संग धृतराष्ट्र ने किया, तो शकुनी के प्रभाव से। आपको पता नहीं होगा कि धृतराष्ट्र का एकमात्र शत्रु शकुनी था, और कोई धृतराष्ट्र का शत्रु नहीं, धृतराष्ट्र का एकमात्र शत्रु था शकुनी, और धृतराष्ट्र ने शकुनी को अपना सबसे बड़ा हित चिंतक माना। शकुनी क्यों धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु, क्योंकि शकुनी की बहन नहीं, गांधारी। तो गांधारी, गांधार का ये शकुनी, तो जब शकुनी ने देखा कि मेरी बहन को अंधे के पल्ले बांध दिया, तो शकुनी ने यह प्रण लिया कि मैं इस धृतराष्ट्र और इस धृतराष्ट्र का सारे परिवार को खत्म करके रहूंगा। तो ये सारे षड्यंत्र जो शकुनी रचता था और धृतराष्ट्र को सुनाता था, अब लाक्षाग्रह में जलाओ इन्हें, अब ये द्यूत क्रीड़ा में अज्ञातवास, वस्त्रहरण, ये सब कुछ। शकुनी धृतराष्ट्र का पतन देखना चाहता था, क्योंकि शकुनी जानता था कि जब धृतराष्ट्र ये सारे आधर्मिक कार्य करेगा तब जाकर धृतराष्ट्र का पतन होगा। परंतु शकुनी जानता था कि यहां पर युधिष्ठिर, विदुर, भीष्म और कृष्ण जैसे महानुभाव हैं, यदि धृतराष्ट्र इनके संपर्क में आ जाएगा तो उसकी समृद्धि होगी, तो धृतराष्ट्र की समृद्धि न हो इसलिए शकुनी ने ये सारे षड्यंत्र रख रख कर धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति और आसक्त, और इस गलत संग के प्रभाव से धृतराष्ट्र ने क्या 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 आधार्मिक कार्य नहीं किए। तो धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र के प्रति और दृढ़ व्रती बना गलत संग के प्रभाव से। तो यहां पर हमें क्या सीख मिलती है कि हम यदि जो हमारे राष्ट्र हैं, यदि हम अपना दृढ़ व्रत उसमें कम करना चाहते हैं, उसे हल्का करना चाहते हैं, तो ये तीन कम करने होंगे। जो माया देवी प्रलोभन देती है उसमें विश्वास कभी मत करना, जैसे धृतराष्ट्र ने विश्वास कर लिया कि हो सकता है मैं बन जाऊंगा राजा, तो सबसे पहले विश्वास नहीं करना है हमें, तब जाकर हमारा दृढ़ व्रत इन राष्ट्रों के प्रति कम होगा। फिर कि ये सारे संकेत माया देवी साथ साथ देती हैं, जैसे दुर्योधन जब पैदा हुआ तो सारे संकेत धृतराष्ट्र को मिले, फिर भी अंधा बनकर धृतराष्ट्र आसक्त रहा। तो संकेत को सही तरीके से हम लें माया देवी के, और हम इस अंधेपन से बाहर आए, हमारी आसक्ति जो है, और अंततः हम हमारे दृढ़ व्रत को हम काट सकेंगे जब हम गलत संघ को काटेंगे, सही संघ को अपनाएंगे, गलत संघ को काटेंगे तब जाकर। तो ये धृतराष्ट्र, ये जो पहला शब्द है इसकी व्याख्या, तो भगवद गीता प्रारंभ से ही हमारे आसक्तियों का नाश करने हेतु कार्यरत हो गई, इसलिए धृतराष्ट्र उवाच, ये इस शब्द का महत्व है कि जब तक हमारे जीवन से ये धृतराष्ट्र रूपी राक्षस नहीं खत्म होता, तब तक भगवद गीता हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे। तो जब तक ये आसक्ति बने रहेगी, तब तक भगवद गीता का पाठ केवल वो क्या बोलते हैं, आगे पाठ पीछे वो होता रहेगा। तो ये धृत और राष्ट्र। अब आगे है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो केवल आज हम ये जो दो शब्द हैं धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे, ये इसका महत्व क्या है, इसके विषय में हम केवल आपको इसके कौन कौन से मुद्दे हैं बता देंगे, और इन मुद्दों की व्याख्या होगी अगले बुधवार को। सभी वैदिक ग्रंथों की मान्यता है, इसलिए धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। वह युद्ध धर्म की स्थापना हेतु लड़ा जाने वाला था, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। और अंततः वहां सर्वोच्च माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान हुआ था युद्ध के पहले, और वो कौन सा हुआ था, ये सब की चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सत्र में, जहां हम लेंगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इन दो शब्दों का महत्व, इनका वास्तविक अर्थ, आचार्यों ने क्या व्याख्या की है इसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है आज जो हमने चर्चा की उसके ऊपर, किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? समझ में आ रहा है कि जटिल तो नहीं है ना? तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भगवद गीता छोटी छोटी जो पुस्तकें आती है वो भी ले सकते हैं, गीता प्रेस केवल श्लोकों की जो, उसे ले सकते हैं, और वो अगली बार आप लाइए, और फिर हम जो पाठ करेंगे वो थोड़ा और सुखरूप होगा, आसान से होगा। तो जिन्होंने भगवद गीता अब तक नहीं ली, वो लोग आप लोग भगवद गीता अब आज खरीद लीजिए, और साथ साथ इसे पढ़िए भी अपने घर पर। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, उनके अनुवाद, इन सब को भी आप पढ़िए, और अगले बुधवार को जब आए तो वो जो श्लोक है वो श्लोक आप बिना देखे यदि पढ़ पाओ तो और भी अच्छा है, याद कर कर आओ। ये आपको होमवर्क दिया जाता है अगले बुधवार तक के लिए, ठीक है? श्रील प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन में है ये सारे महात्म के श्लोक, प्रभुपाद का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसमें है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।